ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम महाधिवेशन कल से चितवन में होगा शुरू। रासोपा के नेता और महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवन पहुंचने का क्रम है जारी। रासोपा लोकतंत्र से कभी विमुख नहीं होगी, पार्टी सभापति रवि लामिछाने का कथन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा का आगामी महाधिवेशन 26 से 28 मार्गशीर्ष तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। आगामी आर्थिक वर्ष में 15,774 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का सरकार का लक्ष्य। और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान, आईआरजीसी ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन कल से भरतपुर में शुरू होने जा रहा है। महाधिवेशन में भाग लेने के लिए पार्टी के नेता तथा देश के सभी 77 जिलों से महाधिवेशन प्रतिनिधियों के चितवन पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कभी भी लोकतंत्र से विमुख नहीं होगी। पार्टी के महाधिवेशन से पहले आज चितवन में आयोजित बैठक में उन्होंने ये प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वे लोकतंत्र के मार्ग से किसी भी स्थिति में नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र देश का संविधान तथा नेपाल को वर्तमान अवस्था तक पहुंचाने में योगदान देने वाले व्यक्तियों और शक्तियों की नींव पर ही पार्टी खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया गया तो किसी न किसी मोड़ पर गंभीर राजनीतिक दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि घर और समाज में होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में राजनीतिक दलों में होने वाली दुर्घटनाओं की कीमत कहीं अधिक चुकानी पड़ती है, इसलिए भविष्य के कदम अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ उठाने चाहिए। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए सभापति लामिछाने ने कहा कि वे चाहे जिस भूमिका में हो स्वयं को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रस्तुत करें और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को और अधिक व्यवस्थित तथा गतिशील बनाने के लिए होने वाला महाधिवेशन सफल होगा। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने आगामी मार्गशीर्ष 26 से 28 गति तक काठमांडू में महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन की अध्यक्षता में कल और आज आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने मार्गशीर्ष 26, 27 और 28 गति महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय किया है। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठ ने दी। उनके अनुसार महाधिवेशन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए अध्यक्ष लिंगदेन की अध्यक्षता में महाधिवेशन मूल आयोजक समिति का गठन भी किया गया है। इसके अलावा बैठक ने आगामी भाद्र माह के अंत तक जिला अधिवेशन संपन्न करने तथा आश्विन 15 से 24 गति के बीच सभी सातों प्रदेशों के अधिवेशन संपन्न करने का निर्णय भी किया है। सरकार ने महिलाओं को लक्षित करते हुए सभी सातों प्रदेशों में ब्लू बस सेवा शुरू करने की तैयारी आगे बढ़ाने की जानकारी दी है। सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुसार महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निःशुल्क ब्लू बस सेवा संचालन की तैयारी की जा रही है। कार्ययोजना के तहत पहले चरण में 100 दिनों के भीतर कम से कम 25 बसों को संचालन में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत काठमांडू पत्रिका में साझा यातायात के सहयोग से कम 7 बसों को ब्लू बस के रूप में संचालित किया जाएगा। वहीं काठमांडू पत्रिका के बाहर सभी प्रदेशों के यातायात व्यवसायी संघों के साथ समन्वय करके कम से कम 18 बसों के संचालन की तैयारी की गई है। ब्लू बस सेवा शुरू होने के बाद विशेष रूप से छात्राओं, श्रमिक महिलाओं, कर्मचारियों तथा प्रतिदिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का माहौल उपलब्ध होने की अपेक्षा भी की गई है। आगामी आर्थिक वर्ष में सभी सातों प्रदेशों में ब्लू बस सेवा के संचालन के लिए आवश्यक बजट और कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त 15,776 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने सिंचाई विस्तार, नदी नियंत्रण तथा राष्ट्रीय गौरव की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता में रखा है। वर्तमान में देश भर में कुल 15,87,910 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंच चुकी है। सिंचाई योग्य भूमि में से 5,32,090 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां वर्ष भर सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहती है। कृषि योग्य भूमि में लिफ्ट सिंचाई और जलाशय आधारित सिंचाई की सुविधा 5,671 हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने जानकारी दी कि निर्माणाधीन तथा मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता वाले परियोजनाओं को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्री श्रेष्ठ ने बताया कि सिंचाई क्षेत्र की पुरानी तथा रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। मोहतरी की बर्दीवास नगर पालिका ने बाल विवाह को कम करने तथा कानूनी उम्र में विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए 51,000 रूपये नगद प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। अब 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विवाह करने वाले नगर पालिका क्षेत्र की बेटियों को 51,000 रूपये नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था नगरपालिका की 18वीं नगर सभा में आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए प्रस्तुत नीति तथा बजट कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक की गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने वर्षा और समृद्धि के देवता माने जाने वाले रातो मच्छिंद्रनाथ की भोटो यात्रा का आज अवलोकन किया। पारंपरिक सांस्कृतिक विधि के अनुसार ललितपुर के जावला खेल में आयोजित विशेष समारोह में शामिल होकर उन्होंने यात्रा का अवलोकन किया। राष्ट्रपति पौडेल ने रातो मच्छिंद्रनाथ के साथ साथ जीवी देवी कुमारी के भी दर्शन किए। हर वर्ष रातो मच्छिंद्रनाथ का रथ जावला खेल पहुंचने के चौथे दिन राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति में भोटो दिखाने की परंपरा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान में युद्ध की देखरेख करने वाले खातम अल अम्बालिया मुख्यालय ने घोषणा की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों का खंडन किया है। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक खातम अल अम्बिया मुख्यालय ने अपनी इस घोषणा के पीछे अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का कारण बताया है। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में ईरान इसराइल की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन और लेबनान के सैकड़ों हजारों लोगों का क्रूर जनसंहार और विस्थापन को भी इस घोषणा का कारण बताया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। नौसेना ने इसका कारण अमेरिका और इसराइल पर युद्ध विराम के उल्लंघन के आरोपों को बताया है। इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौते में युद्ध समाप्त करने के लिए 14 बिंदुओं की रूपरेखा तय की गई थी। IRGC ने सभी जहाजों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब न आए वरना आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। खातम अल अम्बिया मुख्यालय ने दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी कराने में असफलता का भी जिक्र किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम महाधिवेशन कल से चितवन में होगा शुरू। रासोपा के नेता और महाधिवेशन प्रतिनिधि चितवन पहुंचने का क्रम है जारी। रासोपा लोकतंत्र से कभी विमुख नहीं होगी, पार्टी सभापति रवि लामिछाने ने का कथन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राप्रपा का आगामी महाधिवेशन 26 से 28 मार्गशीर्ष तक काठमांडू में आयोजित करने का केंद्रीय कार्य समिति का निर्णय। आगामी आर्थिक वर्ष में 15,776 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का सरकार का लक्ष्य और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का किया ऐलान, IRGC ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।